झनक दुलारी का नाम सीता है। प्रभु आप राम को पुकारते हैं तो हे सीते कहते हैं, संबोधन कृष्ण लगता है, इसलिए कृष्ण का नाम मुरारी है। तो जब उनको हम पुकारते हैं तो मुरारी के बदले मुरारे, यद्यपि भाव में प्रेम में उन सबका कोई भी तात्पर्य नहीं है, कुछ भी कह सकता है, विष्णु कह सकता है, विष्णु कह सकता है, जो कुछ इच्छा कर भाव का ही जनार्दन है, तो भी यहाँ तक बन करे हम लोग उसी रूप में बुलाना चाहिए। सीता कहने से सीता तो नाम है, किंतु कोई भी उनको पुकारेगा तो सीते, हे सीते राम, सीते कह करके पागल हो जाते, हे सीते तू कहाँ है, तू कहाँ है। और मुरारी उनका भी नाम है, ठीक है, किंतु जब पुकारेंगे ये हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, आप हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गृहकार्तव्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूदिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम शरणं। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्श्रीष्ण भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज गुरुपाद पद्म के चरणों में कोटि कोटि परम्पार नमस्कार ज्ञापन करता। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णु पार्षिष्म भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार ज्ञापन करता है। कल हमने अन्याभिलाषिता में अनुकूल्य कृष्णानुशीलन भक्ति के लिए जो रुचिकर हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रुचिकर हो और उनके लिए हितकारी हो, तन मन वचन से ऐसे क्रियाओं को कर्मों को करने का नाम भक्ति है। यदि वो तरह तरह की कोई संसारिक अभिलाषा के लिए न हो और ज्ञान और कर्म से आच्छादित न हो तो उत्तम भक्ति हो। इसके बाद में मैंने तरह तरह के उदाहरण दिए, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश महाराज, हनुमान, पांडव, और फिर पांडवों से नीचे आया तो उद्धव जी का कुछ कुछ सुनाया। जिसको प्रेम नहीं है उसको विरह नहीं रहेगा, विरह की आग उसके हृदय में नहीं लगती, ये भी बतलाया हमने। तो इसलिए गोपियों को कृष्ण से कितना अनुराग और कितना विरह है कि दिन रात उन्हीं की चिंता करते हैं। हुँ? ब्रह्मरात्रि को कृष्ण ने बंसी बजाया, गोपियां आकर्षित होकर के गईं, इसको भी मैंने भी बतलाया। अब थोड़ा सा गोपियों का कृष्ण के प्रति कैसा अनुराग और प्रेम है, ये रासलीला पंचाध्यायी के द्वारा थोड़ा सा बतलाता। कल बतलाया जो गोपियां घर में पतियों को, पुत्रों को, सब कर्तव्यों को जलांजलि देकर के कृष्ण के पास में आई। अब कृष्ण ने कहा कि तुम वन की शोभा देखने के लिए आई थी, मुझे दर्शन करने के लिए आई थी, मैं भगवान परमात्मा हूं, ये भी काम हो चुका, घर में लौट जाओ। पति लंगड़ा लूढ़ा जैसा हो, यदि वो रुपया कमा भी नहीं सकता है तो भी लूढ़ा हो, जैसा भी हो, पतियों की सेवा करना परम कर्तव्य है। जो ऐसा नहीं करता वो बड़ा दुखी होता है। बहुत तरह से समझाया किंतु गोपियां घर में लौटी नहीं, कृष्ण को निरुत्तर कर दिया कि आप तो भगवान हैं या जो भी है हमारे गुरु हैं, कि इतना सुंदर कर्तव्य का ज्ञान हमें बतला रहे हैं। तो स्त्रियों का परम धर्म है पति की सेवा, तो मेरे समझ से, हम लोगों के समझ से गुरु को पहले प्रणाम करके तब पति को सेवा करेंगे, क्योंकि सब बिना गुरु को प्रणाम किए हुए कोई काम सफल नहीं है। इसलिए आप हमारे गुरु हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप हमारी सेवा ग्रहण करें, तत्पश्चात हम अपने पतियों की सेवा में जाएंगे। और जगत के परम पति तो आप ही हैं, आप जगत के पिता, माता, भाई, बंधु, सब कुछ आप ही हैं, तो आपको ही हमने पति के रूप में, सर्वस्व प्रियतम के रूप में हमने जाना। इसलिए आदेश कीजिए, आप भी हम लोग से बात करें, और नहीं करते हैं तो वेद शास्त्र आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, वे अपनी बात लिए रखते हैं। क्यों? जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सर्वभयम्। कृष्ण की यह प्रतिज्ञा है, जो जिस रूप में, जिस भावना से हमारी सेवा करता है, हम उसी रूप में उसके मन की मनोरथ को पूर्ण करते हैं। हमारे मनोरथ को आप पूर्ण कर नहीं रहे, आप शास्त्रों के विरुद्ध चल रहे हैं, कृष्ण निरुत्तर हो गए। और फिर रास हुआ, उस रास में कृष्ण करोड़ों गोपियों के बीच में एक एक में एक हो गए, और राधा जी के पास में एक रहे, और इतनी जल्दी से, फुर्ती से नृत्य करते थे। सभी गोपियां देखती थी, राधा जी देखती थी, हमारे ही निकट है और किसी के निकट नहीं। आश्चर्यजनक ये बात थी। उस समय में सभी गोपियों को अहंकार कुछ हुआ, एवं भगवत कृष्ण लब्धमाना महात्मना, वो गोपियों कृष्ण से अपना इतना आदर देखा, कृष्ण हमें इतना आदर कर रहे हैं, हमारे ही साथ के नृत्य कर रहे हैं, दूसरों के साथ में नहीं। तो कृष्ण के द्वारा पाए हुए इस आदर को देख करके अपने को और स्त्रियों से, यहाँ तक कि राधा जी से भी अधिक समझने, क्योंकि राधा जी के पास में हमको देखा नहीं, इसने कहने की मैं ही सबसे धन्य हूँ, मैं ही जगत में सबसे बड़ी सौभाग्यवान हूँ जो कृष्ण मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं और किसी के साथ। और राधिका जी को मान हुआ कि उन लोगों के साथ में नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और हमारे साथ भी, इससे उनको मान हो गया। कृष्ण ने देखा, समाय उन गोपियों के मान के अभिमान सौभाग्य को देख करके उसको दमन करने के लिए, मैं राधा का अधिक प्रिय हूं, राधा जी हमारी सबसे प्रिय पल्लवा है, इसको दिखलाने के लिए और राधा जी का मान भंजन करने के लिए वहीं पर वो अंतर ध्यान हो, गोपिया प्रेम में विवश होकर करोगे। श्रीमद् भागवत में इसका बहुत वर्णन है, तो यही बतला देना चाहता हूं, प्रेम में वो पागल हो गई, मैं हूं ये भी भूल गई, और कृष्ण में तन्मय होकर के कृष्ण जैसा भाव। एक गोपी को कह रही है, देखो मैं जैसु, मैं कृष्ण को बांध रही हूँ, और एक गोपी को बांध रही हूँ। दूसरी जो गोपी थी जिसको बांध रही है वो कौन है? कोई पुतना बन गई और कोई माँ यशोदामन, कोई कृष्ण बन गए। पुतना कौन बनी? उन गोपियों में से कोई नहीं बनी, वो जोग माया ने उसके बदले एक और सृष्टि करके रख दी, वो बन गई। आया नहीं समझ में? ठीक से नहीं? एक गोपी प्रेम में तन्मय हो गई और वो पुतना बन गई एक, और दूसरी बन गई कृष्ण, और कृष्ण बन करके एक दूसरी गोपी का स्तनपान करने लगी और कहे अच्छा भी देखो हमारा प्राण हर लेते। तो जो कृष्ण बनी वो तो गोपी बनी, और जो पुतना बनी वो पुतना वो भाव नहीं हो सकता। तो ये पुतना कौन बना? जोग माया ने उसके बदले एक दूसरे को गोपी को अपनी माया से प्रस्तुत कर दी, सृष्टि कर दी। इसी तरह से वो तन्मय हो गई। कृष्ण को ढूंढते 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 बहुत दूर बंद में चली गई। हा नाथ रमण प्रेष्ट क्वाश क्वाश मां, हे कृष्ण तुम कहां हो? कहां कृपा करके हम लोगों को अपनी अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए, दर्शन दीजिए। ये कह करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद में राधिका को देखा, राधिका भी विलाप कर रही जिसको लेकर के कृष्ण गए थे। देखा ये भी विलाप कर रही है, क्यों? इसको तो लेकर के अंतर ध्यान हुए। तो कहने लगी कि हमको भी कुछ अभिमान हो गया। उन्होंने कहा जे कंधे पर, मैंने कहा जे मैं चल नहीं सकती, कंधे पर चढ़ो, और जब ही मैं कंधे पर चढ़ने चली तभी अंतर ध्यान हो गया, वन में कहीं छिप गए। और वो भाव करके वो भी मूर्छित हो गई। गोपियों ने उनकी मूर्छा छुटाई और अंत में यमुना के तट पर ले गई पुलिन में, और वहीं पर रो रो करके कृष्ण के लिए प्रार्थना करने लगी। इसी को कहते हैं गोपी गीत। पहले क्या बतलाया? वेणु गीत, अभी आया गोपी गीत, तब इसके बाद आएगा जुगल गीत, और इसके बाद आएगा भ्रमर गीत। बहुत से श्रीमद् भागवत में बहुत से गीत है जिसमें कि ये पांच प्रधान है। तो उसी में वो रो रो करके प्रार्थना कर रही है। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वत त्रहि दैत दृश्यता दीक्षुतावका प्रैर्थिता सब त्वां विचिन्वते। इस प्रकार से कृष्ण के विरह में तन्मय होकर के विरह सूचक कीर्तन करने लगी। आप कहां है? कहां ढूंढे? ये ब्रज तुम्हारे जन्म की वजह से आज यहां पर लक्ष्मी स्वयं श्री देवी वृंदावन में झाड़ू लगा रही है, और क्या कर रही है? आपके जन्म की वजह से ब्रज में फल फूल से लत रहा है, वृंदावन हरा भरा बना हुआ है, कृष्ण के खेलने के लिए क्रीड़ा करने के लिए ये बन रहा है। दैत दृश्यता दिक्षुस्ता का प्रैभिता सवास्तान नीचे और दर्शन देखते ठाकुर जी को दे दीजिए। दैत दृश्यता दिक्षुस्ता दर्शन दीजिए। इस प्रकार से बोलते बोलते प्रार्थना करने लगी और विरह में कातर हो गई। तो कहती है प्रणत दे बिना, मैं छोड़ दिया बीच में, बहुत है इसकी व्याख्या है, मैं छोड़ रहा हूं, एक दो श्लोक की केवल व्याख्या करूंगा और एक श्लोक से दूसरा श्लोक कुछ संबद्ध है, बधा हुआ उसका लिंक पहले श्लोक से दूसरे श्लोक का, तीसरे का, चौथे का, ये सब लिंक बंधा हुआ है। साधारण आदमी नहीं जान सकता है, कोई वैसा ही पाठक हो जो अपने सब गुरु की सेवा करके उनके मुख से सुना हो इसकी व्याख्या जो चैतन्य महाप्रभु जी ने बतलाई, हमारे सनातन गोस्वामी इत्यादि गुरु गोस्वामी जीव गोस्वामी के माध्यम से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या कोई पढ़े सुने तब प्रणत दे रुपया कह रही हैं, हम लोग आपकी सखी हैं, आपकी किंकरी हैं, आप अपने मुख को दिखला करके, मुख रूपी कमल को दिखला करके हमारे प्राण को रक्षा की, हमारे सिरों पर अपना हाथ दीजिए। उसने कहते ये कैसे संभव होगा, तुम पराई स्त्री और तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दूं, ये तो बड़ी बदनामी की बात होगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। तब गोपियां कह रही हैं प्रणत देहिनां पाप कर्षणम्, जो प्रणत हो जाता है आपका शरणागत हो जाता है उसके समस्त पापों को आप नष्ट कर देते हैं, समूल नष्ट कर देते, उसका कोई पाप ही नहीं रहता, केवल शरणागत करने से, मैं आपका शरणागत हूं तन से मन से वचन से, उसके सारे पाप धुल जाते। और हमारे सिर पर ये करने से आप स्वयं जिसके नाम से ऐसा हो जाता है, कहने से ऐसा, प्रार्थना से हो जाता है, जिसके नाम में इतना बल है, वाल्मीकि जैसे लोग कोटि कोटि अपराध किया, पाप किया, अजामिल ने पाप किए, किंतु नाम लेते ही बस सब उसके दूर हो गए पाप। और आप साक्षात जिसके हाथ सिर पर हाथ रख देंगे उसके पाप क्या बाकी रह जाएंगे, वो तो समझ जरूर नष्ट। फिर गोपियां करेंगे इसलिए मैं खर जैसा भी हो, मैं अपने पैरों को तुम्हारे सिर पर कैसे रख सकता हूं, यह संभव नहीं। क्यों कि तुम्हारे सी अंग बड़े कठोर हैं और तुम्हारे हृदय में आग जल रही, इसलिए हम नहीं रख सकते। तो गोपियां कह रही हैं उत्तर में तृणचरा अनुगम, गायों के पीछे जंगल में कांटों में घूम सकते हो और हमारे कोमल हृदय पर वस्त्रक्षल पर क्या आप अपने चरण कमलों को नहीं रख सकते, नहीं यह संभव नहीं है। श्री निकेतनम, श्री माने लक्ष्मी जी का जो निकेतन है घर, उसको तुम्हारे जो केवल मात्र पतिव्रता वो धारण करती है लक्ष्मी जी, उनका ये आश्रय है तुम लोगों के वस्त्रक्षल पर मैं अपना पैर नहीं रख सकता, ये संभव पर नहीं। श्री निकेतनम, श्री माने लक्ष्मी जी, उनका निकेतन माने आश्रय घर है, लक्ष्मी जी अपने गोदी में उनके चरणों को सब समय लौटती हैं, मसाज करती हैं, लौटती हैं। इसका एक कारण है, वो कारण क्या है, एक समय पार्वती ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की स्त्री और लक्ष्मी जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां, ये तीनों परस्पर बात कर रही हैं। देखो अत्रि की जो पत्नी है अनुसुईया पतिव्रता है, अपने को पतिव्रता भी मान करती है, और जगत में हम तीनों से भी अधिक उसी की ही पूजा होती है। हम लोग इस इतना सह नहीं सकते कि हम लोगों से भी उसके पूजा और आदर हो, इसलिए अपने अपने पतियों से हम कहें कि उनकी परीक्षा लें और परीक्षा में उसे क्या कर दें,
सतीत्व नष्ट कर दें
और उसका सतीत्व नष्ट करें अपने पतियों से कर ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो गई और अपने अपने पतियों से कही बोली, यह है ना, इस पृथ्वी में हम लोगों से भी अधिक पतिव्रता के रूप में अनुसुईया जी अत्रि जी की पत्नी जी मानी जाती हैं, उनकी सभी लोग पूजा करते हैं, हम लोगों को कोई नहीं पूछता, इसलिए आप लोग तीनों से प्रार्थना करते हैं कि उनका यह जो पतिव्रता धर्म है उसका नाश कीजिए, और नहीं तो हम हड़ताल पर रहेंगे, हम खाएंगे पिएंगे नहीं। भूख हड़ताल कर दिया, अंत में बाध्य होकर के तीनों ने, अच्छा भाई जब ये मानती नहीं है हमारी बात तो चलो, तो वो चित्रकूट में गई, चित्रकूट में तीनों गए और जाकर के उन्होंने भिक्षांग देही कहने लगे, भिक्षा दो भिक्षा दो। अनसुईया जी भीतर से आई, तपस्या में लीन थी, जब आई तो उन्होंने कहा हम भिक्षा मांगना चाहते हैं, तो घर से फल मूल कंद जो घर में था लेकर के उनको देने लगी, तो उन लोगों ने लिया नहीं, कहा ये नंगी होकर के दो। उन्होंने ध्यान लगाया, अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, बस इनके सामने भी नंगी होना हमारा कर्तव्य नहीं, पतिव्रता धर्म हमारा नष्ट होगा, इसलिए अत्रि ऋषि का जैसे आप लोग थोड़ी देर ठहरिए, और ध्यान जोर से उनके अपने पति के पास में पहुंच गई और बोली कि ये तीनों हमसे नंगी होकर के भिक्षा देने के लिए कहते हैं, मुझे क्या कर्तव्य है, मुझे कोई बात नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा कहते हैं वैसा करते। उन्होंने सोचा ठीक है, पति का तो आदेश मिल ही गया, वो नंगी हो गई और ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा कि तुम आज के जन्मे हुए बेटे बन करके हमारे गोद में खेलो। उनके कहने के साथ ही साथ में पतिव्रता धर्म का क्या ये कि वो तेने तीनों अभी आज जैसे बच्चे जन्म लिए वैसे जन्म लेकर के और तीनों उनकी गोदी में ये पान करने लगे, स्तनपान करने लगे और उनको पिलाने लगे, इस तरह से अपनी तपस्या करती, उनको पालन भी करने लगे, लौटने नहीं दिया। अब वो बड़ी विकल हो गई, ब्रह्मा वो लक्ष्मी जी ब्रह्मानी जी और कौन उमा जी पार्वती, हमारे पति कहां गए। नारद जी एक दिन बिना बजाते हुए पहुंचे और तुम लोगों ने बहुत ही अपराधजनक काम किया, आज उसका फल ये तुम लोग चखो, अरुंधति का पति धर्म नष्ट करने के लिए तुम लोगों ने भेजा था, तो इसके बदले तुमको शुल्क देना होगा अपराध भंजन करने के लिए, कैसे होगा, अब तुम एक बात करो, क्या ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी का अभिमान छोड़ो, गरीब ब्राह्मणी का वेश धारण करो और उनके यहां जाओ और जाकर के उनसे भिक्षा मांगो, तब वो दे सकती है, अन्यथा नहीं, तब तक तो उन्हीं के पास में दूध पीते रहेंगे और छोटे से बच्चे बने रहेंगे आएंगे, उनको याद ही नहीं है माया के बल से। अब अंत में नारद जी की बात मान करके गए और वहां जाकर के ब्राह्मणी बन गई और उनसे भिक्षा मांगने लगी। तुम लोग कौन हो, किस लिए यहाँ आए हो? तो हम आपकी बहू हैं, आपके पास है तो हमारी बहू, अभी तो हमारा लड़का अभी बड़ा ही नहीं हुआ बहू, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, नहीं हम आपकी बहू हूँ, आपके पास में भिक्षा मांगने के लिए आई, आप हमारी माता के समान हैं, आप प्रसन्न होकर के हमें भिक्षा दीजिए। तो क्या भिक्षा दें? क्या आप हमारे पतियों को लौटा दीजिए। उन्होंने कहा अच्छी बात है, दया आ गई। तो उन्होंने कहा जैसे ये तो बच्चे तीनों हमारे गोदी में सब समय खेलते रहेंगे और ये हमारे पुत्र बने रहेंगे, और दूसरे रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तुम्हारे पास मिल जाए, तो एक रूप में तो उनको भेज दिया, उनको लेकर के चली गई, और दूसरे रूप में किस रूप में? दुर्वासा, शंकर जी दुर्वासा के रूप में और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में और कौन रह गए? विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, किसके रूप में? दत्तात्रेय ही है, देख लें उस रूप में रह गए, उनके साथ पास में बच्चे बनकर, इसलिए वो दुर्वासा जी हैं, वो चंद्र हैं और एक दत्तात्रेय जी, याद है आई? तो ये थी। अब वो जब लौट करके गई लक्ष्मी जी, अब नारायण को पाया तो उनको गोदी में रख करके उनके पैरों को पलटने का अर्थ है जो वो नहीं चाहती है कि कभी यहां से वो जाए फिर, इसलिए उसको पकड़ करके दबा रही है। इसलिए श्री निकेतनम फणफणार्पितम, ओ मैं तुम्हारे बस सक्षम पर किसी प्रकार से अपने चरणों को नहीं रहेंगे, भले ही पाप दूर हो न हो, तो फणफणार्पित काली का अंदर हृदय में, काली दह में विष उगल रहा वो और उसमें आग लग रही है और उसमें कूद गए, उसके सिर पर नाच रहे हैं और आपके ये चरण कमल हमारे यहाँ पर इतने तप्त हैं कि उससे भी अधिक है। फणफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणीकुचे सुनः कृन्दहित, हमारे हृदय के ताप को दूर करे, हमारे अंगों पर आपके श्री चरण कमलों को रख। एक एक श्लोक ऐसे ही है, तव कथामृतं तत् जीवनं कविवित्तं कल्मषाः श्रमणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाजनाः। कृपा कर दो भाई, ब्रज का कीर्तन करो गलियों में।
जय सुंदर हरिलाल की, जय जय श्री राम। मैं रघुराधारा धना ब्रज की गलियों में, मैं रघुराधारा धना की गलियां में मैं तो आयो पिता बन गया।
Thank you. Hello. Thank you.
सुन ले तो जीवित हो उठता है। इस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को भागवती कथा सुना रहे थे, सुनाने के लिए आरंभ किया। देवता लोग आए, जी महाराज आप कृपा कीजिए, हम वैकुंठ से अमृत ले आए हैं, कलश, ये कलश दे दीजिए परीक्षित को, ये इसका पान कर ले और साथ साथ में एक दिन आकर के डसेगा भी तो वो मरेगा नहीं, और हमें ये कथा दे दीजिए। अरे मूर्खों, श्रीमद् भागवत की तुलना इस लौकिक पेय जो अमृत है उससे हो सकती है? तुम लोग तो पीते हो, तुम्हारा काम क्रोध लोभ मद मोह दूर हुआ? अहिल्या के साथ में तुमने क्या व्यवहार किया? अमृत तो पिया, काम बढ़ गया ना, और क्रोध इतना जो ओ, क्या नाम जिसे इंद्र से हजारों वर्ष युद्ध हुआ, वृत्रासुर, वो एक ब्राह्मण के लड़के को तुमने मारा, काम क्रोध लोभ मद मोह सब अमृत पान करने से बढ़ जाता है, कमता नहीं। और भागवत की एक मोक्षामृत होता है, मोक्ष होने से संसार का दुख सब दूर हो जाता है सदा के। और भागवत कथा अमृत है, भगवान की लीला कथा है, वो स्वयं भगवान है, मुक्ति तो हो जाएगा, दुख भी दूर हो जाएंगे। और अभी समझो ना समझो, भगवान की लीला कथाएं भगवान स्वयं है, जो भगवान नहीं कर सकते भगवान की लीला कथाएं वो कर देंगे। मोक्ष तो उसको चरणों में डोलता है, इसलिए तब कथा अमृतम, यही अमृत है। कृष्ण के ब्रज लीला में भी प्रवेश करके उनकी सेवा का अधिकार दे सकती है ये हरि कथा। तप्त जीवनम, जो लोग तप्त हैं संसारिक दुखों से तरह तरह से, और युवावस्था में अभी तप्त नहीं है, अब बुढ़ापा आ रहा है भाइयों, तैयार रहो, पैर नहीं चलेंगे, बुद्धि काम नहीं करेगी, और फिर शरीर को छोड़ करके भी जाना है, कुछ नहीं साथ में जाना है, इसलिए जीवन तप्त है। उसके लिए कैसा है, जीवन देने वाली है, फिर जन्म मरण के ताप को सदा के लिए दूर कर देने वाली कथा है। कभी ऋणतम, कभी भी कवियों ने, कौन कवि ने, ब्रह्मा जी ने, नारद ऋषि ने, भगवान व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी तो अपने को नहीं कहेंगे, इसलिए वहां तक पराशर इत्यादि सब लोगों ने इसकी बार बार इसकी प्रभाव जगत में बतलाया है। कबीर उन्होंने इसकी वंदना की है, इसकी महिमा का वर्णन किया है। कल्मषापहम, सारे जगत के जीवन के पाप सब को दूर कर देने वाली ये भगवान की कथाएं होती है, हृदय को निर्मल बना देने वाली और कृष्ण भक्ति को देने वाली ये कथाएं होती हैं। सुनने से मूर्ख लोग सुनते नहीं जानते कि हम जितना प्रयास धन के लिए करते हैं, ये धन तो चला जाएगा, साथ में लेकर के एक दमड़ी भी नहीं जानी है, तो भी उसको उसी के पास में दमड़ी के लिए भागते हैं और हरि कथाओं को छोड़ देते हैं। भागवत में कहा गया वो क्या है, पशु घाती है, अपनी आत्मा का हनन करने वाले, दूसरों के भी पशुओं की भी बलि देने वाले ये लोग हैं। ओ कल्मषापहम, श्रवण मंगलम, श्रवण करने से ही मंगल देने वाली है, और कुछ अब कुछ करना नहीं है। भगवान की कथा हमारे परीक्षित महाराज जी 7 दिन तक कथा सुने, क्या किया, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन कुछ किया, कथा सुनने से ही बस मंगल ही मंगल है। सीमदाततम, सीमद आततम भूमि गृढ़ दे भूरिदार, श्री को विस्तार करने वाली है, जीवन को आनंदमय बना देने वाली है, कृष्ण भक्ति देने वाली है। भूमि संसार में समस्त प्राणियों के लिए गृढ़ ते भूल जाए, जो लोग भागवत की कथाएं सुनाते हैं उनके समान हमारा दानी जगत में कोई नहीं है, वो भूरी भूरी देने वाले, जो विशेष करके बिना पैसा के बगल में पोथी लेकर के भागवत की रख करके और भागवत की प्रेममयी कथाओं को सुनाते हैं, इनसे जगत में कोई भी अधिक हमारा कल्याणकारी हितकारी नहीं है। कौन हितकारी है, भागवत की कथाओं को सुन करके जन्म जन्म मरण का सबका दुख सदा के लिए दूर कर देते हैं, वही सबसे भूरिदा है, अर्थात सबसे अधिक दानी। एक गोपी दूसरी कह रही है, उसका अर्थ दूसरा है, वो क्या, केवल नमूना के लिए मैं दो एक की व्याख्या कर रहा हूं, समझिए जी इसके अंदर में क्या गुड़ छपा है। तब कथा मृतम, कोई संसार में बाल बच्चों के साथ में, भाई के साथ में, रिलेटिव के साथ में, स्त्री के साथ में, पति के साथ में बड़े सुख आराम से है, उनको कथाएं कैसी हैं, मृतम विष के समान है। कैसे, संसार के दुखों को दूर करने वाले, अरे कोई प्रमाण है, प्रमाण तो बतलाओ। अरे गोपियां कह रही है ये प्रमाण तो हम हैं, हम अपने बाल बच्चों के साथ में, पति के साथ में, सबके साथ में बड़े प्रेम के साथ में संसार कर रही थी, और जिस दिन तुम्हारी ये कथाएं हम लोगों सुनी हमारा जीवन उत्तप्त हो गया, विषमय हो गया, आज रास्ते की भिखारी बनी ही है उस कथाओं के लिए ही, स्ट्रीट बेगर बनी हुई हुई है हम लोग, आज कोई पूछने वाला हमें नहीं है, आज घर बार हमारा सब कुछ छूट गया, किस लिए, ये तुम्हारी कथाओं के लिए। तप्त जीवनम, हमारे जीवन को तप्त कर दिया ऐसी कथा। कभी ऋणितम, अरे कभी लोग कहते हैं एक कागज का घोड़ा बनाकर जी ये तो आकाश में उड़ रहा, कहेंगे नहीं देखो तो ये आकाश में फूल खिल रहे हैं, आकाश में फूल खिलता है, कभी लोग ऐसा ही वर्णन करते, मानो आकाश में बहुत तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। अरे कभी नहीं, एक घोड़ा दौड़ रहा है, कहा जैसे ये तो आकाश से बातें कर रहा है। अरे घोड़ा कहीं आकाश से बात करता है थोड़े, किंतु कर ये कवियों की कल्पना है, यथार्थ में ये नाम विषमय है, उनकी कथा विषमय है। कौन कह रहा है? राधा जी का दल। कलमश आप हम, कलमश को बढ़ाने वाला है, दुख दारिद्र सब हम लोगों को जैसे दुख इत्यादि मिल रहा है, आपने भी हमें छोड़ दिया भौरे की तरह, अब इससे अधिक दुख की क्या बात हो सकती है। श्रवण मंगल, केवल श्रवण मात्र में ये ऐसा लिखते हैं किंतु यथार्थ में श्रवण में मंगल की शिकायत हम लोगों का हुआ। जो वही सुनता है भगवान की कथा, वृंदावन में घर बार छोड़ करके चले आते हैं, पशु पक्षी जैसे घर भी नहीं बनाते, रोते रुलाते हैं सब जगह। वृंदावन में ऐसे अजस्र लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी लोग पड़े हुए हैं, जो बस कृष्ण की कथा एक बार सुन लिया है उनका जीवन ही उत्तप्त हो गया। श्रीमद आततम, श्री माने शोभा, आनंद इत्यादि, ये सबको काटने वाला है। आततम माने काटने वाला है, जो कोई इस कथा को सुनाता है भूरीदार, वो जीवन को खंडन करने वाले, काटने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, उनकी कथा खबरदार मत सुनो। ऐसे ही बहुत से हैं प्रसंग, इसमें मैंने दो एक सुनाया, ऐसा एक एक श्लोक के अंदर में कितने भाव भरे पड़े हैं जिसका की कोई सीमा नहीं। अब हम चलते हैं आगे। कृष्ण कंस को मारा, चारों मुष्टि को भी मारा, अब वो वृंदावन में लौट जाने वाले हैं, किंतु वसुदेव जी देवकी अक्रूर महाराज उग्रसेन और जादव लोग आकर के रोने लगे। अरे बेटे, तुम हमारे बेटे हो, आध रात में तुम्हारा जन्म हुआ, कंस के अत्याचार से वो मरने वाला था तुम्हें, इसलिए बचपन में तुम छोटे हो, कहीं मार न डाले, इसलिए हमने गोकुल में भेज दिया था, मैं खुद जाकर के वहां पर रखाया और उनकी बेटी को ले आया था, इसलिए तुम हमारे बेटे हो, तुमको अब हम छोड़ोगे तो हम लोग मर जाएंगे तुम्हारे विरह में। कृष्ण ने कहा जी ये तो बड़ी भारी बात हुई, इधर ब्रज में नहीं लौटता हूं तो ब्रज वाले मरते हैं और यहाँ रहता हूं यहाँ भी मर जाएंगे। तब एक बात है, ब्रज में हमारे भक्त हैं, इसलिए सारे संसार के भक्तों को मैं छोड़ नहीं सकता, मैं तो सबका हूं ना, मैं परब्रह्म हूं, भगवान स्वरूप हूं और सबका हितैषी हूं, इसलिए ब्रजवासियों का कुछ दिन रहा साथ में तो कुछ मथुरा में वाले भक्तों के पास भी रहना चाहिए, नहीं तो कंस से छुटकारा नहीं होगा, कंस लोगों को तबाह कर डाला है, उसे मारना है, उन भक्तों को सुखी करना है, इसलिए वे लौटे नहीं। इसके बाद में शाम हो गई, नंद बाबा बैठे हुए देख रहे हैं कि कब आएंगे हमारे बेटे कृष्ण और बलदेव, हम ब्रज में लौटेंगे। शाम को उस दिन नहीं आए, उन लोगों ने जबरदस्ती रोक रहा, दूसरे दिन शाम को वो आए रात में और उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा जी बेटे, क्या तुम समझ रहे हो कि वसुदेव और देवकी ही तुम्हारे पिता हैं? नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, क्या तुम समझते हो? बलदेव बोले, मैं जानता हूं कि आप ही हमारे पिता माता हैं, आप पिता हमारे हैं, यशोदा जी मैया है, मैंने कभी सपनों में नहीं समझा जी वसुदेव जी और देवकी हमारे माता पिता हैं। यदि कृष्ण को आप ले गए और मुझे नहीं ले गए तो मैं भी प्राण छोड़ दूंगा, कन्हैया के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। कृष्ण ने पूछा, अब क्या करना कर सकते हैं? तो बलदेव तो बचा है और तो बाकी तो उसके सब पुत्र मारे गए हैं देवकी वसुदेव के। कितने? आठ थे ना पहले, सात, छह बचे हुए थे, छह मर गए थे। तो ये और मर जाएंगे इसलिए बलदेव को रख जाएंगे। बलदेव जाए मैं नहीं रहूंगा, बिना कृष्ण के कन्हैया के नहीं रहूंगा। तो कन्हैया ने कहा जैसे तो हमको भी छोड़ दीजिए दो चार दिन के लिए, उनको सांत्वना दे करके ब्रिज में चले आएंगे, मैं कल जरूर आ जाऊंगा। ये ब्रिज में प्रतिज्ञा करके कृष्ण आए थे, ये कल जरूर लौट आऊंगा मां, उनसे भी वही पता है मैं बहुत जल्दी से आ जाऊंगा। इसके बाद में वो तो रोते 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 तो लौट गए, अयोध्या कृष्ण चले गए गुरुगृह में। कितना? 60 दिन में, 64 दिन में 64 कलाएं सीखे और गुरुजी के मरे हुए पुत्र को लेकर के दिया और फिर लौटे और लौट करके अभी मथुरा में थे, देखा यमुना जी में पानी भरा हुआ, किस लिए? गोपियां इतनी रो रही हैं कि सबका पानी एकदम भरा। वृंदावन की याद आई और चले गए ऊपर छत के ऊपर में और देखा वृंदावन की तरफ, ब्रज की लीलाओं की याद आई, मैया यशोदा नंद बाबा और ब्रजवासी लोग, सखा लोग, गिरिराज गोवर्धन, यमुना नदी इत्यादि याद आते ही रोने लगते। उसी समय उद्धव जी उनको खोजते हुए ऊपर में पहुंचे, उनको देख करके बड़े प्रेम के साथ में उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और डकट डकट करके रोने लगे। बोले गच्छ उद्धम ब्रजम सौम्य सौम्य, हे मेरे हितकारी, मेरे परम बंधु, मेरे मित्र, मेरे सलाह देने वाले, हमारे मंत्री, आप सब कुछ हमारे हैं, हमारे सेवक हैं, हमको परामर्श दो मैं क्या करूं, ये क्या करना है? एक बात करो हे सौम्य, तुम्हें ऐसी शक्ति है ये ब्रजवासियों को समझा सकता है। हमारे पिताजी तुम्हारे दीरा में और माता जी बड़ी दुखित हैं, उनके प्राण तन से निकलना चाहते हैं, जल्दी से जाओ और उन्हें समझाओ। और देखो तुम्हारा समझाने से गोपियां नहीं मानेंगी, जो अभी तक जीवित रह रही हैं हमारे लिए, किस लिए? इस आशा से जीवित रह रही हैं कि कितना बच गया, इसलिए जीवित रह रही हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा था जे आयास से दौड़ तक है। उन्होंने कहा मैं आऊंगा कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा, इसलिए कृष्ण सत्यवादी हैं, जरूर आएंगे ही, भले ही देरी हो रही है किंतु आएंगे जरूर, इसलिए वो किसी प्रकार से जीवित रह रहे हैं, उनको जाकर के समझाओ। मन मनस्का, वो गोपियों की खुद प्रशंसा कर रहे हैं प्रेम की, मन मनस्का अपना मन हमारे अंदर में लगाए हुए हैं, उनका मन उनके पास में नहीं है, किसके पास में है? हम लोगों के पास में, तब तभी तब तक मरी जाती। मन मनस्क, मन मनस्का का एक उदाहरण हम प्राय कहते हैं, शायद जानते होंगे, फिर भी मैं प्रसंग वर्षा बतला रहा हूं। मन मनस का गीता का अंतिम अध्याय में 18वां अध्याय में मन मना भव, अर्थात तो तुम अपने मन को हमारे अंदर में दो तो कैसे दो, इसका उदाहरण बतला रहा हूं। वो गोपियां ही है, दूसरा नहीं है कोई, इसका उदाहरण बस गोपियां ही गोपियां उदाहरण, दूसरा कोई जन्म ही नहीं दिया ऐसा। कैसे? एक नवेली वो ब्याह करके बरसाना से नंदगांव में आए या किसी गांव से ऊंचा गांव से, अभी नवेली थी, कृष्ण के संबंध में सुना था किंतु कभी मिली नहीं थी। तो विवाह करके जब आई तो कृष्ण गोचारण करने के लिए दूसरे दिन जा रहे थे, करोड़ों करोड़ों गाय बछड़े और करोड़ों करोड़ों ग्वाल बा बलदेव जी भी चल रहे हैं, और गोपियां जितनी थी माताएं बहने और गोपियां कोई झरोखे से, कोई द्वार पर आकर के, कोई झाड़ियों के अंतराल से, कोई लताओं के बीच से कृष्ण को निहार रही हैं, वन में गमन कर रहे हैं। और ये नवेली जब जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी मैया उसे कह रही है, अरे बेटी घर से बाहर मत जाना, काला नाग है, काट देगा भी कभी उतरेगा नहीं, इसलिए मत जा। अरे मैं काला नाग सबके लिए है या मेरे लिए की है नाग, तुम्हारी बेटी को क्यों नहीं डरता, तुम्हारी बेटी तो आगे दौड़ करके गई है और तुम क्यों जा रही हो, तुम तो बड़ी शक्ति है, तुमको तुम क्यों जाएगी, तुम भी तो देखने की दौड़ करके जाने वाली थी। नहीं मैं जानती हूं तुम मत जाना, तुम्हारा हमारा विष उतर जाएगा, तुम्हारा विष नहीं उतरेगा। अच्छा तो घर से निकाल दो, चाहे जो कुछ करो मैं तो चली। और यह कह करके वो दरवाजे पर खड़ी हो गई किवाड़ की आड़ में, और श्याम सुंदर वहीं से समझ गए ये नवेली अभी ब्याह करके आई है। एक बछड़े की पूंछ थोड़ा सा छोड़ दी, छेड़ दी, और वो ऐसा कुत्ता फांता हुआ ठीक उसी गोपी के पास में आया। कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर के उस गोपी के थोड़ी में छुला दी और उसके तरफ में मुस्कुराते हुए देखा और उसका मन ले लिया, लेकर के बछड़े को चराते हुए चले गए। जब तक ओझल नहीं हो गए वन में तब तक वो गोपी वहीं पर खड़ी रही।
क्या
तब तक गोपी वो खड़ी रही, मन तो है नहीं, कृष्ण चले गए, धूली उड़ती हुई चली गई, खत्म हो गई, कुछ शेष नहीं रहा। इतने में सास आई, मैंने कहा था ना जो काल वो काला नाग तुमको सांप दस देगा, विष नहीं उतरेगा, तुम्हारा विष उतरा नहीं, मैंने कहा था। और हम लोग तो परिपक्व है ना, देखो हमें तुम्हें समझा रही हूँ, हमारी बेटियां तो चली गई और तुम नहीं गई। थोड़ी देर के बाद में उसको पकड़ करके ले गई और घर में बैठा गई, इसे ये दही मत ना करो। तो वो घर में गई, जाओ घर से लाओ वो क्या कहते हैं मटकी, ले आओ दही की। तो ले आई और उसे मथने लगी, तो देखता है वो तो दही मंथन का शब्द आ नहीं रहा है, वो तो खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है। तो उसकी सास आई बोली, अरे ये क्या कर, मैंने कहा ये दही ले आओ मत हो, तो तुम राई मत रही हो। अच्छा एक बात करो, कुएं से पानी लाओ, कुएं ब्रज में दूर दूर होते हैं, मीठा पानी बहुत कम है। हाथ में एक घड़ा, उसके ऊपर एक घड़ा, इसके ऊपर एक घड़ा दे दिया, हाथ में डोल बाल्ची दे दी पानी खींचने के लिए, और उसके एक अपने बेटे को या दूसरे के बेटे को उसके हाथ में रख दिया, जाओ ले आओ। वो गई कुएं पर, बड़े आराम के साथ में चली गई, वहां जाकर कुएं पर बच्चे को रखा, घड़े को रखा, घड़े के बदले बच्चे के गले में वो लगाया फांस, और कुएं में डालने वाली थी क्योंकि मन तो था नहीं, मन तो श्याम के पास। इतने में और गोपियां जो खड़ी थी, अरे इसको भूत लग गया, और जो जानने वाली थी उन्होंने कहा जो भूत नहीं नंद जी का पूत लगा है। फिर बड़ी मुश्किल से उसे ठीक करके उसे घर में ले गई। यह है मन मनस का, गोपियों का ऐसा कोई भी गोपी नहीं है जिससे इससे बढ़ करके नंद का पूत नहीं लगा हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी बतलाया गया तो क्या है, कृष्ण के चित्त के ऊपर में आरोप, धन्यास मभु आरंभ कहां से, जा जा दोहने वहनने मथनो पलेप प्रेंखें खना भी उदितो खन मार्जना जो गायंत गुप्यो जनिता अनुरागा गायंत गुप्यो श्याम सुंदर जिसके मन के रथ के ऊपर में सब समय रहते हैं और गोपियां कृष्ण के मन के ऊपर में सब समय बढ़ रहते हैं, उनको कोई और चिंता ही नहीं रहती। ये मन मना हुआ राधा जी इस गोपी से करोड़ों गुण उनका प्रेम है, तो उनका चित्त कैसा होगा यदि इस गोपी का ही ऐसा भी नवेली अभी एक दिन की आई है। तो इसलिए साधन भजन करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया मन मना भाव, करे युद्ध भूमि में मन मना भाव ये तो होना कठिन, इधर करे युद्ध भी करो। तो फिर उन्होंने कहा मन मना भाव, मन मना भाव मद याजी मद भक्त हमारे भक्त बन जाओ। अरे युद्ध क्षेत्र में भक्त बनने से काम चलेगा, लड़ेंगे और ये तो फिर क्या मद याजी हमारा अर्चन करो। अरे अर्चन संभव है यहाँ पर हम ले आए घंटी और ये सब बजाए न युद्ध करें। तो फिर मन मनावा माम नमस्कार हाँ नमस्कार करो, हाँ ये कर सकता हूँ नमस्कार करके और युद्ध करूंगा, बस इतने से ही तुम्हारा विजय हो जाएगा। उनका विजय हुई, ये सब श्लोक हैं और कथाएं हैं। तो ये उद्धव को ब्रज में भेज रहे हैं मनस्कार मत प्राणा, मेरी प्राण है मैं उनका प्राण हूं, मदर्थे तक्त दैह का देह और दैहिक सब कुछ को हमारे लिए प्रत्याग कर दिया है गोपियों, हम लोग कर सकते हैं मुश्किल। अभी कितने दायित्व हम लोगों के हैं ना, बेटे हैं बेटियां हैं विवाह है शादी है और देश के प्रति कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, कितना कर्तव्य घेर रखा है। माम एव दैतम एकमात्र मैं ही उनका प्रियतम हूं, प्रेष्ठम आत्मानं मनसागत, इसलिए हे उद्धव दूर गोकुल में खड़ी है वो है, हमें विरह में उत्कंठा में स्मरण करते हुए किसी प्रकार से मेरी एक बात के ऊपर में रखा है क्या कल आएंगे। कृष्ण श्याम सुंदर का करके गए कल या परसों में आ जाओ, इन तो परसों बीत गए आएंगे, इसमें भी रस अच्छा हुआ है क्यों ये पीछे बतलाएंगे। एक कीर्तन हो जाए
पार करेंगे नैया रे भजन कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भजन कृष्ण
कन्हैया। गोविंद वो भी बहुत भजन में मगन होते हैं, उनका चित्त बहुत भजन में लगा था, तो बहुत बिजनेस में बिजी हो जाते हैं और उनका पुत्र जो है दुखी होते हैं, वही जो घूमे आपके साथ आए ना उनको भी भजन करके बोलेंगे तो उसको बहुत
Krishna Kanhaiya, Manjuri Kanhaiya.
भेजने के लिए कहा, उनको कुछ संदेह हुआ, मैं तो कृष्ण के बिना एक सेकंड नहीं रह सकता, मैं वृंदावन में अकेले कैसे रहूंगा, कृष्ण ने कहा कि उद्धव मैं तो वृंदावन में ही रहता हूं, यहां तो एक टुकड़ा रहता हूं, बाकी पूर्ण रूप से मैं वृंदावन में ही रहता। तुम जाओगे देखोगे कि मैं वृंदावन में, तुम कोई चिंता मत करो। ये कह करके अपना सोने का रथ जो कंस का व्यवहार वाला था, सोने का रथ जिसको अक्रूर को दे करके भेजा था, उसी रथ को मंगवा करके और उस पर बैठाया और उनको विदा कर रहे और ये कह रहे कि तुम ब्रज में जाओ। किस लिए? भगवान का के कार्य 5-7-1 ही बात के द्वारा हो जाते हैं। एक काम के द्वारा 5-7 वो अपना कर्तव्य का निर्वाह कर लेते हैं। कैसे? उद्धव जी को कह रहे हैं ऊपर से, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, हल्ला मत। अब ये सुनने देंगे? ए बैठो, बातचीत मत करो। क्या कहा? उद्धव को भेज रहे हैं ऊपर से, क्या कह रहे हैं? ऊपर से कह रहे हैं जाओ हमारे माता पिता को, ब्रजवासियों को, विशेष करके गोपियों को सांत्वना दो। भीतर से क्या है? वो जानते हैं कि उद्धव की क्या सामर्थ्य है जो गोपियों को या हमारे बाबा को सांत्वना देंगे, ये इनसे काम होगा। जाओ, भीतर से उनका ये तात्पर्य है गुड़, उद्धव तुम जाओ ब्रज में और जिसकी पाठशाला में मैं बैठ करके प्रेम 2.5 अक्षर का प्रेम पढ़ा, उसी पाठशाला में जहां पर राधा जी प्रिंसिपल है, ललिता विशाखा एक एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और मंजरिया इत्यादि क्या है, प्रोफेसर टीचर इत्यादि है, वहीं जाओ और उनकी पाठशाला में बैठ करके उनके आदेश से उसमें तुम प्रेम पढ़ करके आना। तो फिर तुमसे मैं कुछ प्रेम के संबंध में बातें, यहाँ मथुरा में कोई प्रेम से बात करने लायक है ही नहीं, कोई भी नहीं है जो मेरी बात को, मेरे हृदय के दर्द को समझो, ले जाओ। तो वो प्रेम की पाठशाला में उनका नाम लिखा गया कि नहीं? टेस्ट हुआ, टेस्ट में कितने लोग बैठे? उद्धव ही बैठे, किंतु उनका मार्क उतना नहीं आया कि उस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो सके, एडमिशन नहीं हुआ। क्यों? घर से देखा, क्या देखा? उस भवन को देखा, आते जाते हुए टीचरों को देखा, प्रोफेसरों को देखा, अभी प्रिंसिपल से भी भेंट नहीं हुई है, वो तो भीतर में कमरे, खास कमरे में रहते हैं, इसलिए भेंट नहीं हुई। इसलिए वहां से चले, तो कृष्ण की इच्छा थी कि वहां से आए, किंतु हुआ तो नहीं, इसलिए बीच में लौट आना पड़ा, स्कूल में भर्ती नहीं हो सके, इतना ऊंचा प्रेम की ऊंची, ऐसी ऊंची सगाई, प्रेम ऐसा ही है, इसलिए एडमिशन नहीं मिला। दूर से झांक करके चले, वृंदावन में रह नहीं सके, तो वो कृष्ण ने उनको विदा किया। शाम हो गई, कहां से? मथुरा से आते 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 नंदगांव शाम हो गई, शाम हो गई गोधूली का समय। कृष्ण ने कहा था जो हमको पूर्ण रूप में वही देखेगा, मैं टुकड़े में रूप में यहां हूं। तो देखा क्या? गोपियां, शाम हो गई है और वो सोने के उसके ऊपर में प्रदीप जला रही है, या सवेरा है, दधि मंथन कर रही, बिरा नाम की कोई चीज नहीं, मानो कृष्ण ही है यहाँ पे। गोविंद दामो धर्मांगवे की, गोविंद दामो धर्मांगवे, गोविंद दामो धर्मांगवे, गोविंद दामो धर्मांगवे। इस प्रकार से गान कर रही है रोती सभी। और क्या देखा, हजारों लाखों गायें जो कि कम से कम तो 100 किलो दूध देने वाली, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बाटे, और उनको देख करके सांड दौड़ रहे हैं और उनके छोटे बच्चे फुदुक रहे हैं, कैसे कैसे श्यामल रंग के और सफेद राजहंस जैसे उछल कूद रहे हैं। सखा लोग प्रेम में विभोर हो रहे होकर के तैयार हो रहे हैं गोचारण करने के लिए। सारा दृश्य जो जब कृष्ण ब्रज में थे वैसा ही दृश्य उपस्थित हुआ। अब थोड़ी देर के बाद में देखा कुछ नहीं, कृष्ण के विरह में गोपियां पछाड़ खा करके गिर रही है, गाय दूध नहीं पीती, दूध नहीं देती, बछड़े दूध नहीं पीते, मयूर अब उके काके काका करके नित्य नहीं कर रहे, कोयल कुहक नहीं रही है, पपी है मोर मंगुए मधुर मधुर बोली नहीं बोल रहे, सारा ब्रज एकदम सूखा उजड़ा हुआ है। वही गोवर्धन किंतु कृष्ण की लीलाएं नहीं है, ऊपर से नहीं, किंतु भीतर से सभी वहां है। किसी किसी जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो देखते हैं, उद्धव जी ने ऊपर से देखा कुछ नहीं, शून्य शान एकदम, विरह में सभी आतुर हैं। सोने के रथ को अक्रूर वाला जो ले आए थे कंस वाला, नंद बाबा के द्वार पर खड़ा कर दिया। घर में भीतर घुसे नंद बाबा को देख करके नंद बाबा को प्रणाम किया, उन्होंने अखबार में भर ली, घर में ले गए, उनको बैठाया बड़े आदर के साथ में, और सेवक के द्वारा उनके पैर दबवाया, और किसी ब्राह्मण के यहाँ से कुछ खीर मंगवाई। खीर कैसी, वो भी खीर में मीठा नहीं, चीनी नहीं, बिना शक्कर का ऐसे ही। अब लेकर के उनको दिया, उनको तो बड़ी भूख लगी थी, खूब प्रेम से खाया, और जब खा पी करके बैठे नंद बाबा जी बड़े भाव से उनसे पूछना चाहा, हमारा बेटा कैसा है, श्याम सुंदर कैसा है। पूछ नहीं सके, गला भरा है, पूछ ही नहीं सके, रौंद गया गला, रोने लगे। फिर किसी प्रकार से कृष्ण को बुला करके बोले, ये हमारा भैया वसुदेव कैसा है, उसका पाप ही ने उसे डूबा मारा, हमारा बेटा नहीं मारा, कौन मारा, उसका पाप ही स्वयं उसे मारा। हम लोग को भी यही समझना चाहिए, हम लोग जन्म मृत्यु इत्यादि में पड़े हुए हैं, मरते किस लिए हैं, वैसा कर्म करते हैं इसलिए मरते हैं, नहीं तो मरते नहीं, कष्ट पाते हैं अपने कर्मों से, किंतु को होते हुए भी कृष्ण की कृपा मान करके अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल मान करके हंसते हुए भोग करते हुए चले जाओ, और जहां दुखी हुए तहां सब गड़बड़ हो जाए, उसको भगवान की कृपा मान करके भगवान का भजन मत छोड़ो, किसी भी स्थिति में परिस्थिति में भगवान का भजन नहीं छोड़ना है, और सब कुछ छूट जाए, माता पिता भाई बंधु सब तो आज न कल तो छोड़ेंगे ही, इसलिए जो कुछ भी छूटना है छूट जाए, किंतु भगवत भजन नहीं छोड़ सकते, गुरु नहीं छूट सकता है? माता पिता एक जन्म के हैं और गुरु जब तक के उद्धार नहीं हो, उद्धार के बाद में भी गुरु बने रहेंगे, इस लोक में भी परलोक में भी रहेंगे, इसलिए उनके साथ में जैसे कृष्ण के साथ में संबंध है, गुरु के साथ में भी वैसा ही संबंध है, ऐसा संबंध। ऐसा नहीं कोई दुख आ गया तो गुरु को भूल गए, या सुख आया तो गुरु कहीं भूल गए, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए जैसे तैसे सब समय में सब स्थितियों में भगवान का भजन करना चाहिए। उनसे पूछना चाहता है तो पूछे, ये कंस अपने पापों से मरा है, और ये कह करके पूछते हैं फिर किसी से, तो मेरे बेटे कैसे है, गला भराया, भूलने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं उद्धव साधो, उनको साधु भी कहते हैं, उद्धव भी कहते हैं, उद्धव। कभी भी कृष्ण हम माता पिता को कभी स्मरण करता है, सुहृद आश्रय पड़ोसियों को कभी स्मरण करता है, सखियों को स्मरण करता है, गोप में ब्रज में जो गोप हैं, हम लोग एक ही मात्र वही हमारा प्रियतम है, प्राण बंधु है, सखा है, कभी स्मरण करता है। देखो याद रखना, हम कृष्ण को भूल जा सकते हैं, भूल सकते हैं, किंतु कृष्ण में भूल जाएगा, कृष्ण कभी नहीं भूल सकते। हम लोगों के लिए खुद अवतरण होते हैं, उतरते हैं पृथ्वी में, अवतार लेते हैं, किस लिए? साधारण लोगों पर कृपा करके, भक्तों को भी कृपा करके, उनको अपने स्वधाम में ले जाने के लिए। हम लोग याद ही नहीं करते, एक बार भी उनका नाम नहीं लेते, लेते हैं तो किस लिए? ध्रुव जैसा धन संपत्ति विद्या इत्यादि के लिए लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, वो पास हो जाए, वो दुख है दुख दूर हो जाए, इसके लिए ऐसे प्रेम से भगवान नहीं मिलते। किंतु कृष्ण इसीलिए लीला स्वयं आकर के उतर करके करते हैं श्लोक में, जो लीलाओं को सुन करके भी कृष्ण के तरफ में चित्त किसी का न किसी न रुक, और अपने बाद में अपनी कथाओं को छोड़ जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी को छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे हनुमान जी को छोड़ देते हैं, जो हमारी कथाओं का प्रचार करेगा और लोगों का उद्धार होगा, कृष्ण इतने दयालु हैं। तो वही कह रहे हैं, ये कृष्ण कभी क्या हमें स्मरण करते हैं? भला ऐसा हो सकता है जे कृष्ण गोप गोपियों को, माता पिता को, नंद यशोदा को भूल जाए? तभी ये नंद बाबा कह रहे हैं, ओ हम लोग इसीलिए जीवित हैं कि कह दिया कि वो आएगा जरूर, आया से मैं आऊंगा, आज कल परसों जरूर कंस का वध करके भक्तों का दुख दूर करके मैं आऊंगा, तो वो जरूर आएगा ही आएगा, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। ओहो कैसा बलवान था, दवाग्नि से हमारी रक्षा की, उसका दवाग्नि को ही पान कर लिया, काली हद का पानी स्वच्छ करने के लिए उसमें कूद पड़ा और कालियों को वहां से दमन करके और उसे रमणक द्वीप में भेज दिया। ओहो कंस के द्वार पर तीन ताल, ताल समझते हैं ताल का वृक्ष, उसे भी लंबा धनुष था उसको उठा करके तोड़ दिया, बड़े बड़े कबिल्यापीड जैसे हाथी को भी उसने मार करके खत्म कर दिया, चारण मुष्टु को भी खत्म कर दिया। अरे कंस साधारण था, 10,000 हाथियों का बल, और उसको ऊपर से गिरा करके बस एक मिनट में वो बस खत्म। ओ मैं क्या करूं, उनको भूलने के लिए गोवर्धन में जाता हूं, तो गोवर्धन में देखता हूं उसके छोटे छोटे चरण चिन्ह है, और स्मरण आता है जमुना के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि जमुना के किनारे तो बच्चों के साथ में गोपियों के साथ में खेलता पिलता था, वहीं पर कलश भर करके उस घाट पर जाती थी पानी भरने के लिए। मैं जहां जाता हूं कृष्ण की लीलाएं वहां पर मुझे स्मरण आती हैं, ये कहते 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 मूर्छित हो गए। रात भर उद्धव जी ने कहा, जे कृष्ण ने तो मुझे सांत्वना देने के लिए भेजा, तो इनको मैं क्या संतना दूं, जो रोइये मत, मैं तो जानता हूं जो सब शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार भी कृष्ण के लिए जिनके आंखों में आंसू आ गया वो सौभाग्यवान है। तो मैं क्या कहूं जिसे कृष्ण को भूल जाओ, मत रहो उनके लिए, तो शास्त्र हमारा मुख बंद कर देंगे, जैसा मत कहो, तो फिर क्या कहूं जैसे रो रो खूब अच्छा है, तो ये भी तो नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ का अकल मेरी काम नहीं कर रही है कि क्या कहूं, जो रो या खुश रहो, बस चुप रहो, चुप रहो ये भी नहीं कह सकता। अंत में उद्धव जी ने कहा, जो सब शास्त्र कहते हैं कृष्ण के लिए, जो कृष्ण को अपना उस पर ब्रह्म को, विश्व ब्रह्मांड का रचना करने वाले जिनके अंश कलाए उनको अपना पुत्र मान करके उसके लिए ये रो रहा है, निश्चित सौभाग्यवान है। इसलिए उन्होंने कहा, उद्धव नहीं बाबा, आप और माता कौन, जशोदा, हाँ सौभाग्यवान है, इनके समान विश्व में कोई संभव, क्यों, तीनों लोगों के कर्ता धर्ता विधाता भगवान श्री कृष्ण आज उनके पुत्र के रूप में हैं, और वो पुत्र का मान करके के उसके लिए विरह में तड़प रहे हैं, तो आप लोगों जैसा सौभाग्यवान कोई। नंद बाबा जो रो रहे थे उनका आंखों सूख गया और बोले, जे बेटे तू क्या करा, मैं समझता था कि कृष्ण के साथ में तुम्हारी अकल आ गई है, अब बुद्धिमान हो गया है, किंतु तुम्हारी अकल अभी तक नहीं आई, अभी तुम्हारे दूध के दांत हैं अभी गिरे नहीं, कृष्ण का एक भी गुण तुम्हारे अंदर में नहीं है। देखो पिता एक था अयोध्या में, उसका नाम महाराज दशरथ था, उसका एक बेटा था राम, किसी कारण से वन में चला गया, तो एक बार कहा जे हा राम, दूसरी बार हा राम, और तीसरी बार हा राम नहीं निकला, बस प्राण छोड़ दिए। मैं तो ऐसा रो करके अपने प्राण को भी छोड़ नहीं पाता, मैं पिता नहीं, पिता होने लायक जहां था वहीं पर गया है, जहां उसको प्रेम मिलता है, भगवान तुम करे जो भगवान है ना, तो मैं उसके पिता होने योग्य नहीं था, इसलिए मैं छोड़ करके चला गया, इसीलिए ये कहते 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 प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़े। सारी रात ऐसे ही चली गई। दूसरा दिन हुआ, अब दूसरा दिन क्या हुआ, उद्धव जी स्नान करने गए, वहीं पर कृष्ण कुंड है, और इधर मैं 6 बजने जा रहा है, 5 मिनट है, 5 मिनट अब थोड़ा सा कीर्तन करा दो, आज की कथा का यहीं पर विश्राम दे रहे हैं, अब कल और परसों का दिन है, परसों का दिन और 2 दिन है, लोग अधिक संख्या में आए तो अच्छा है, कुछ हमारी कथाओं